ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। युयन्द्रलोके बत भूरि भागा लोकं पुनानामनयो अभियन्ति। एषां गृहाणावसतीति साक्षात् गुढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। युयन्द्रलोके बत भूरि भागा लोकं पुनानामुनयाभियन्ति। एषां गृहाणावसतीति साक्षात् गुढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। युयन्द्रलोके बत भूरि भागा लोकं पुनानामुनयाभियन्ति। एषां गृहाणावसतीति साक्षात् गुढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। மதாய். शब्दार्थ युयम तुम सभी पांडव नृलोके इस जगत में बत निसंदेह भूरि भागा अत्यंत भाग्यशाली लोकम ब्रह्मांड के सारे लोक पुनाना शुद्ध कर सकते हो। मुनया बड़े बड़े साधु पुरुष अभियंती सामान्य पुरुष की भांति देखने में आते हैं। एशाम जिसके ग्रहान पांडवों के घर को आवसति रहता है इति इस प्रकार साक्षात प्रत्यक्ष गुढ़म अत्यंत गोपनीय परम दिव्य ब्रह्म परब्रह्म श्री कृष्ण मनुष्यलिंगम मानो सामान्य व्यक्ति हो। अनुवाद और तात्पर्य इसीलिए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेकानेक संतजन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। तात्पर्य, यह वैष्णव की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कथन है। मानव समाज में ब्राह्मण की सर्वाधिक ब्राह्मण ही सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति है। ब्राह्मण वह है जो निर्विशेष ब्रह्म को समझ सके, लेकिन शायद ही कोई उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ पाता हो जिन्हें भगवद गीता में अर्जुन द्वारा परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण भले ही अत्यंत भाग्यशाली माना जाए, किंतु पांडव तो इतने भाग्यशाली थे कि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे। भूरि भागा शब्द बताता है कि पांडवगण ब्रह्मचारियों तथा ब्राह्मणों से भी उच्चतर पद पर थे। अगले श्लोक में नारद मुनि पांडवों के पद की महिमा का बारंबार वर्णन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारणे। नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनामाप्रदं देवं अवधूता शिरोमणिं आनंदलीलामय विग्रहाय हेमांब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसा प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा। हरे कृष्णा। एक बार भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसका नाम था राजस्वीय यज्ञ। यह राजस्वीय यज्ञ वही राजा कर सकता था जिसने समस्त विश्व को अपने कब्जे में कर लिया हो। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से समस्त राजाओं को पराजित कर लिया और उन सब को अपने अधीन कर लिया, और इस कारण से महाराज युधिष्ठिर ये राजसूय यज्ञ कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण इस राजसूय यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे थे। कैसे? अपने आप को महाराज युधिष्ठिर के परिवार का सदस्य मानकर मैनेजमेंट कर रहे थे। जैसे यदि हमारे घर पे कोई त्योहार हो, शादी विवाह हो, तो उस समय हमारे घर परिवार के सारे लोग जुड़ जाते हैं, सारे संबंधी जुड़ जाते हैं, उसी तरह से भगवान भी अपने को महाराज युधिष्ठिर का एक सेवक मानकर, एक परिवार का सदस्य मानकर उनके इस राजस्व यज्ञ का सारा मैनेजमेंट कर रहे थे। भगवान वास्तव में उस परिवार को अपना मानते थे, तो जो भी अतिथि आते थे, ब्राह्मण आते थे, उनकी चरण सेवा करने का कार्य भगवान ने स्वयं अपने पास रखा था। वो ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य, उनके जो चप्पल होते थे उनको स्वच्छ करने का कार्य भगवान स्वयं करते थे। यद्यपि लोक में यह बात प्रचलित थी कि ये जो कृष्ण है ये साक्षात भगवान है, सबके हृदय में स्थित परमात्मा है, परब्रह्म है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे छोटे छोटे कार्य करते थे। वास्तव में भगवान एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे कि किस तरह से सेवा करनी चाहिए। यहां तक कहा गया है लोक में कि भगवान झूठे पत्तल उठाने का काम भी करते थे। जब साधुओं का सारा भोजन समाप्त हो जाता था, अतिथियों का भोजन हो जाता था, तो भगवान स्वयं आकर उन सारे अतिथियों के झूठे पत्तल उठाकर उसको रख देते थे। भगवान इस तरह से महाराज युधिष्ठिर की सहायता कर रहे थे, और इसी कारण से भगवान, और क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये भगवान है, परब्रह्म है, और इसी कारण से उनकी उसी राजस्व यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ जानकर उनकी पूजा भी की गई थी। ये बड़े आश्चर्य की बात थी, लेकिन सब लोगों ने उनकी पूजा की, कि ये सबको बताने के लिए कि ये श्री कृष्ण जो ये साधारण कार्य कर रहे हैं, ये सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, ये सबको बताने के लिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उस राजस्व यज्ञ में घटना हो गई। घटना ऐसी हो गई कि जो शिशुपाल था, जिसने जब से बोलना सीखा था तब से भगवान को गाली देता था, और ऐसे शिशुपाल का भगवान ने वध किया, और महाराज ऋषिराज सब लोगों ने देखा कि उसका जो आत्मा है वो भगवान में आकर लीन हो गया। तो महाराज युधिष्ठिर समझ में नहीं आ रही थी बात कि कैसा एक निंदक, शिशुपाल जैसा निंदक कैसे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब ये प्रश्न उठा, डाउट आया उनके हृदय में, तो उन्होंने नारद जी को वहां पर पकड़ लिया और नारद जी के चरणों में वहां पर बैठकर उन्होंने नारद जी से यह प्रश्न किया। अब उस सभा में नारद जी वक्ता थे और भगवान श्री कृष्ण, श्री सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास आदि बड़े बड़े ऋषि राजर्षि लोग श्रोता थे, बड़े बड़े देवता लोग वहां पर बैठकर अब कथा सुनने लग गए, भगवान भी बैठे हुए थे, और नारद जी महाराज युधिष्ठिर की इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए लग गए। और नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को सर्वप्रथम शिशुपाल और दंतवक्र के पूर्व जीवन का इतिहास सुना दिया, किस तरह से वह जय विजय थे और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, इस तरह से सुनाते जा रहे थे, और उन्होंने प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं का भी उन्होंने अच्छी तरह से निरूपण किया। इसके पश्चात ये जब सुन लिए, संतुष्ट हो गए इस उत्तर से, तब महाराज युधिष्ठिर ने और जिज्ञासा करना प्रारंभ किया। उन्होंने चार वर्णों और चार आश्रमों के बारे में पूछा कि उनके क्या क्या कर्तव्य है। महाराज युधिष्ठिर वास्तव में थे तो बहुत बड़े श्रेष्ठ वैष्णव, लेकिन अपने आप को हीन मानते थे, और नारद जी जैसे साधुओं का आश्रय प्राप्त करके वे अपने सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करना चाहते थे। वास्तव में साधु संग करने का यही फल होना चाहिए, यदि हमें साधुओं का संग प्राप्त हो जाए तो हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए, हमारे हृदय में जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए। तो जब प्रश्न करेंगे तब हमारा संदेह हटेगा और भगवान के लिए प्रेम बढ़ेगा, भगवान के लिए दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब डाउट नहीं रहेगा तब कैसे हम लोग विचलित हो सकते हैं। जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तब हम अगर हमारे हृदय में डाउट है तब हम बोलेंगे अरे सब भगवान करा रहे हैं, सब हमारे साथ ही होता है। लेकिन यदि भगवान के भक्तों से भी भक्ति की महिमा के बारे में सुना है, भगवान के स्वभाव के विषय में सुना है तो ये डाउट नहीं रहेगा, ये समझेंगे कि हाँ बड़े बड़े पांडव बड़े बड़े भक्तों के साथ भी संकट आया है तो हमारे ऊपर भी आया होगा, हमारा भी प्रारब्ध होगा। लेकिन ये संदेह हटेगा कैसे, साधु संग करने से, उनसे जिज्ञासा करने से। श्रीमद् भागवत में ऐसे कई सारे प्रसंग है जब उन्होंने कथा श्रेष्ठ मुनियों से श्रेष्ठ साधुओं से कथा सुनकर उन्होंने अपना डाउट क्लियर किया है, संदेह दूर किया है। उसके पश्चात जब नारद जी चार वर्णों और चार आश्रमों के धर्मों का निरूपण कर रहे थे उसमें उन्होंने सन्यासियों की बड़ी प्रशंसा की, विशेषकर उन सन्यासियों की ऐसी प्रशंसा की जिन्होंने अपना चित्त संसार से हटाकर कृष्ण में लगा दिया है, भगवान के गुण रूप लीला आदि को श्रवण कीर्तन में लगा दिया है, बहुत बहुत सराहना की। तो यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे गृहस्थ एताम पदवीं विदिना येन चांजसा यया देवऋषे ब्रूहि मादृश ग्रह मूढ़धि। वो कहने लगे कि हे देवर्षि, जिस तरह से सन्यासियों की मति कृष्ण में लगती है उस तरह से हम जैसे ग्रह मूढ़धि अर्थात संसारिक लोगों की मति कैसे कृष्ण में लगेगी, इसका जरा उत्तर दीजिए। कैसे हमारे जैसा गृहस्थ व्यक्ति सारा कार्य करते हुए भी अपना चित्त कृष्ण में लगा सकता है। तो इसके उत्तर में नारद जी ने गृहस्थों के सदाचार का अच्छी तरह से निरूपण किया और उनको उन्होंने उपदेश दिया कि वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। उन्होंने कहा कि अपना जो भी कार्य है उसको भगवान वासुदेव को अर्पण करना चाहिए और उपासित महामुनि महामुनियों के संग में बैठना चाहिए। इस तरह से कई सारे गृहस्थों के धर्मों का उन्होंने उपदेश किया और उसके बाद नारद जी ने समाज में ब्राह्मणों और भक्तों की महिमा के बारे में बताया। अब इस कंद के इस अंतिम अध्याय में नारद जी सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश कर रहे हैं। इस तरह से ये सातवां स्कंद इस तरह से आप लोग आज तक सुनते आ रहे हैं और अंततः नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, मैंने अपने जीवन में साधुओं की अवहेलना भी की थी और मैंने अपने जीवन में साधुओं की सेवा भी की थी और दोनों का घटना मैं तुमको सुनाना चाहता हूं। मैं गंधर्व था और उस गंधर्व शरीर में मैं इतना सुंदर था कि सारी स्त्रियां जो थी मुझसे आकर्षित रहती थी और उस कारण से मुझे मद था और उस मद के चलते जब मुझे देवताओं ने आमंत्रित किया कि उनकी सभा में भगवान के गुणों को गाने के लिए तब मैंने लौकिक गानों को ही गाना पसंद किया और इसे सुनकर ये सारे जो देवता लोग थे ये सारे मुझसे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया और उनके शाप से मैं शूद्र बना। ये हुई साधुओं की अवहेलना करने की सजा। अब जब मैं शूद्र बना दासी का पुत्र बना तब उन महात्माओं की सेवा करके भक्तों की सेवा करके मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात ये नारद का यह शरीर प्राप्त किया है। तो हे युधिष्ठिर, अपने जीवन में साधुओं की अवहेलना कभी मत करना, अपने आप को हमेशा हीन मानना और सबको अपने से श्रेष्ठ मानना और नम्रता से साधुओं की वैष्णवों की सेवा करना। वास्तव में उसके बाद नारद जी अब ये श्लोक, ये आज का श्लोक सुनाते हैं। युयम नृलोक बुति भोरी भागा लोकम पुनाना मुनया अभियंती एशाम ग्रहान आवसती इति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों का भाग्य वास्तव में प्रशंसनीय है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछे, क्यों क्यों नाराज जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। एक साधारण तुम्हारे परिवार का एक सदस्य मानकर वो रहते हैं। इसी और गुप्त रूप से निवास करते हैं वो, उनको रहना चाहिए द्वारका में, लेकिन गुप्त रूप से आकर चुपचाप तुम्हारे पास रहते हैं। तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाते हैं। द्वारका में उनकी पत्नियां भगवान की विरह में तड़पती रहती है और वे आके बस अर्जुन के साथ पूरे रात गप्पे लड़ाते रहते हैं। तो भगवान का वास्तव में तुम लोगों से इतना प्रेम है कि उन्होंने अपने द्वारका तक को त्याग दिया है। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले मुनि बार बार तुम्हारे घर में आया करते हैं। तुम्हें जो ये महान श्रेष्ठ साधुओं का जो संग प्राप्त होता है, ये क्यों होता है? ये श्री कृष्ण की वजह से होता है। वास्तव में अगर देखा गया तो पांडवों का जीवन धन्य है, क्योंकि भागवत में ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जिससे ये साबित होता है। तो हम आज कुछ घटनाओं को हम लोग चर्चा करेंगे, किस तरह से भगवान और पांडवों का जो आत्मीयता है, उनका जो प्रेम संबंध है, वो कैसे है। एक बार की बात है कि युद्ध जब खत्म हो गया था, युद्ध समाप्त हो गया था, उसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर शोक में डूब गए। महाराज युधिष्ठिर सोच रहे थे कि ये जो सारा युद्ध हुआ है, इतने सारे लोग जो मरे हैं, वो मेरे कारण मरे हैं, इसलिए वो राज्य स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो महाराज युधिष्ठिर यद्यपि धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन इस समय ये दुविधा में फंस गए थे कि मुझे करना क्या चाहिए। अपने आप को दोषी मान रहे थे इस सारे महाभारत के युद्ध का, और उन्होंने राज्य अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो बड़े बड़े ऋषि लोग समझाने लगे, भगवान समझा रहे थे, वेद व्यास समझा रहे थे, और धौम्य ऋषि उनके गुरु महाराज समझा रहे थे। इतने सारे लोग समझा रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जो थे वो बात नहीं मान रहे थे कि मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हो गया था, अभी युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया। युद्ध के पहले तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाकर उसको कन्विंस कर दिया कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, अर्जुन मान भी गया। लेकिन यहां पर महाराज युधिष्ठिर भ्रम में है और भगवान समझा रहे हैं और वो मान ही रहे हैं। मान लीजिए कि भगवान किसी को प्रवचन कर रहे हैं और वो ना माने। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण, ये इस घटना को समझाने के लिए हमें एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण संधि दूत बनकर गए थे, तो वे दुर्योधन को कन्विंस कर रहे थे कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो, लेकिन भारी रूप से तो वो बता रहे थे कि तुम पांडवों की सहायता करो, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये अंदर से परमात्मा के रूप से दुर्योधन को समझने नहीं दे रहे थे, मना कर रहे थे उसको कि ना करो, ना दो। भगवान से ही ज्ञान, विस्मृति और स्मृति निकलती है, तो भगवान सबके हृदय में है और वो समझा रहे थे। दुर्योधन भगवान से कहा भी था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्याम धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि कथा करोमि। हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें हमारी रुचि नहीं होती, और मैं जानता हूं कि मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन उससे हमारी निवृत्ति नहीं होती। तो श्री कृष्ण पूछे, क्यों? जो दुर्योधन ने कहा कि जो सबके हृदय में है वो हमारे हृदय में भी है, और वो हमें अधर्म के लिए ही प्रवृत्त करता है, तो हम क्या करें श्री कृष्ण, हम पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकते। तो युधिष्ठिर महाराज के प्रति भी ठीक है सही विचार था। विश्वनाथ चौबे ठाकुर लिखते कि भारी रूप से भगवान समझ रहे थे लेकिन अंदर से युधिष्ठिर महाराज को समझने नहीं दे रहे थे। उसके दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि उनको भीष्म पितामह की महिमा को स्थापित करना था, और दूसरा वो चाहते थे, भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज थोड़ा ट्रेनिंग ले ले भीष्म पितामह से। तो भगवान ने कहा ठीक है युधिष्ठिर, ठीक है भैया कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, ये वेद व्यास जी जो हजारों शास्त्र लिख के बैठे हैं उनकी बात पर आपको विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। आपके गुरु धौम्य ऋषि पर आपको विश्वास नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पितामह भीष्म पर तो विश्वास है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही पितामह भीष्म का नाम सुना तो उन्होंने कहा हाँ पितामह भीष्म पर हमको विश्वास है, 400 साल से है, 400 साल की उनकी आयु है और धर्म के पूरे पूरे ज्ञाता है, किस समय क्या करना चाहिए इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान है। तो भगवान कहे फिर चले ना उनके पास, बोले ठीक है चले, और जो भीष्म पितामह कहेंगे वो करोगे, बोले एकदम करेंगे, राज्य स्वीकार करने को बोले करोगे, एकदम करूंगा अगर पितामह भीष्म कहे तो। तो इस तरह से वे सब लोग पितामह भीष्म के पास जाते हैं, और भीष्म पितामह के जाने के बाद पितामह भीष्म कहते हैं हे युधिष्ठिर, हे पांडवो, एशवै भगवान साक्षात आद्यो नारायणो पुमान मोहयन माया लोकम गुणश्चरति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण जो है ना, ये साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण है और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में लीला कर रहे हैं। फिर उसके बाद विश्व पितामह कहते हैं यम मन्यस्य मातुलेयम प्रियम मित्र सुहत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौरुदादत भासारथिम। अरे जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, जिन्हें तुम अपना प्रिय मित्र समझते हो और अपना हित करने वाला जानते हो, और तुमने प्रेम के वश इन्होंने इनको अपना मंत्री बनाया, इनको अपना दूत बनाया, इनको अपना सारथी बनाया, ये साक्षात भगवान स्वयं भगवान है, ब्रह्मा शिव आदि इनके दास है। तो ये जब भीष्म पितामह के उन्होंने मुख से सुना तब महाराज युधिष्ठिर तो नाराज जी के मुख से सुन चुके थे पहले ये सब बात, लेकिन उन्हें फिर से वो स्मरण आया कि ये भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान, इनकी बात मुझे माननी चाहिए, इनकी बात को टालना नहीं चाहिए। पांडवों के और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम संबंध है वो बड़ा घनिष्ठ संबंध है उनका। यद्यपि वे लोग जानते थे कि ये श्री कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन फिर भी उनका जो संबंध था, प्रेम संबंध था, उस कारण से उनका जो भाव था, भगवत भाव था, वो छुपा हुआ था, ईश्वर भाव छुपा हुआ था, और वे भगवान से अपने भाई के समान, एक मित्र के समान ही प्रेम करते थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि ये तुम लोगों का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये जो भाव है ना, ये बड़े बड़े महामुनियों को, महापुरुषों को भी दुर्लभ है। तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ये सब बहुत दुर्लभ है। ये विराट में युद्ध समाप्त हो गया, जब पांडवों का अज्ञातवास खत्म हो चुका था और वनवास भी समाप्त हो चुका था, तो वहां पर एक सभा हुई थी जिसमें बलराम जी, श्री कृष्ण और बड़े बड़े लोग थे, और सभा में निर्णय चल रहा था कि कौन जाएगा कौरवों के पास उनसे अपना हिस्सा मांगने के लिए। तो वहां पे बलराम जी भी उपस्थित थे, तो इसलिए श्री कृष्ण मौन थे, श्री कृष्ण चुप बैठे हुए थे। लेकिन बलराम जी विचार करने लगे कि अगर मैं जाऊंगा और एक कौरव लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो ऐसा हूं कि वहीं पे मैच खत्म कर दूंगा, सबको वही सर्वनाश कर दूंगा, सबको वही मार काट के फेंक दूंगा, तो ये मुझे करना नहीं है, वो लोग भी मुझे संबंधी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण तुम चले जाओ, तुम किस समय किस किस व्यक्ति से कैसा प्रवचन करना चाहिए तुम्हें इसका भली भांति ज्ञान है, इसलिए तुम चले जाओ। और युधिष्ठिर महाराज भी एग्री हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बिना हित की चाहट से श्री कृष्ण को अपना संधि दूत बनाकर भेज दिया। तो भगवान वास्तव में ये सब कार्य करने के लिए भगवान ही प्रसन्न होते थे, भगवान इससे संतुष्ट होते थे भक्तों की ऐसी सेवा करने से। भगवान युधिष्ठिर महाराज को अपना बड़ा भाई मानते थे, अर्जुन और भीमसेन से तो गले मिलते थे लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चरणों में झुककर प्रणाम करते, चरण छूकर प्रणाम करते थे, कभी कभी अपना मस्तक तक रख देते थे महाराज युधिष्ठिर के चरणों में। और महाराज युधिष्ठिर भी भगवान को आशीर्वाद देते थे कि सदा सुखी रहो, द्वारका में विराजते रहो, तुम्हारी और शादियां होते रहे। तो कोई भगवान श्री कृष्ण कैसे विचार करना चाहिए, कोई छोटा काम करने से श्री कृष्ण छोटे नहीं हो जाते और बड़ा काम कोई करने से भगवान बड़े नहीं हो जाते। जैसे राजसीय यज्ञ में भगवान ने उनके झूठे पत्तल उठाने का काम किया, ये छोटा काम था, तो वो उससे भगवान छोटे नहीं हो जाते हैं। या उसी राजसीय सभा में भगवान की आराध्य मानकर पूजा हो रही थी, इससे भगवान बड़े नहीं हो जाते, भगवान भगवान है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि अपने भक्तों के लिए सारे कार्य करते हैं, कि उनका प्रेम है अपने भक्तों के लिए। भगवान इतनी छोटे छोटे कार्य करते थे, जैसे सारथी बनना। एक बार दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास सहायता मांगने के लिए चले गए। पहले तो दुर्योधन आया लेकिन वो भगवान के सिरहाने बैठ गया, और उसके बाद जब अर्जुन आए तो वो भगवान के चरणों में बैठ गए। भगवान सो रहे थे और जब भगवान जगे तो सर्वप्रथम उन्होंने अर्जुन को देखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन कैसे आना हुआ, क्या हुआ, अर्जेंट आ गए, एकदम इमीडिएटली आ गए, क्या हो गया। तो पीछे से दुर्योधन की आवाज आई, श्री कृष्ण मैं भी आया हूं। तो बोले, बोलो दुर्योधन, हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे तुम्हारी सेवा करूं। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा कि देखो कृष्ण, अब तो युद्ध हो गया, युद्ध का निर्णय तो हो ही गया है, युद्ध तो होने ही वाला है, तो आप हम दोनों के फैमिली मेंबर है, कौरव और पांडव दोनों के हैं, तो आप किसकी तरह से सहायता करेंगे। तो भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, मैं तो युद्ध में निहत्ता रहने वाला हूं, कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी का वध भी नहीं करूंगा, और एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी नारायणी सेना है, अब तुम लोगों को जो चाहिए बोलो, लेकिन अर्जुन को पहले मौका देना चाहिए क्योंकि वो तुमसे छोटा भी है और मैंने भी पहले उसे देखा है। तो भगवान ने कहा, तब दुर्योधन बोला ठीक है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप साक्षात नारायण चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन की भागदौड़ आपके हाथ में सौंप दूं। तो भगवान बोले, क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा सारथी बनना पड़ेगा, आप सारथी रहेंगे, आप यदि मेरा रथ संभालते रहेंगे तो मैं भगवान शिव को भी ऐसे परास्त कर दूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा यदि आप मेरे सारथी रहेंगे तो, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास होगा आप पर, इसलिए है श्री कृष्ण मेरे सारथी बनिए। और दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया कि बोला, अर्जुन कितना मूर्ख है, ये जानकर दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया। अब युद्ध में जब युद्ध होता था तो भगवान तो उसके सारथी थे, ड्राइवर बने थे, तो ड्राइवर का काम क्या है, गाड़ी को साफ रखना, गाड़ी को धोना, ये सब करना पड़ता है ड्राइवर को ना। तो भगवान भी घोड़ों को खिलाना पिलाना, उनको सहलाना, उनको सजाना, रथ में जोड़ना, और फिर रथ तैयार करके अर्जुन के पास वो लेकर आते थे। और ड्राइवर जिस तरह से दरवाजा, मालिक आते ही पहले वो दरवाजा खोल के पहले बाहर खड़ा हो जाता है, उस तरह से भगवान रथ से उतर जाते थे और अर्जुन का हाथ पकड़कर उनको रथ पर पहले बैठाते थे, उसके बाद भगवान बैठते थे। भैया रथी प्रधान होता है तो सारथी को रथी की सेवा करना ही है। अर्जुन केवल युद्ध करते थे, अर्जुन और किसी चीज का टेंशन नहीं लेते थे, ऐसा नहीं था कि भगवान को भी सारथी बना दिया तो सारा छोटा मोटा काम भी अर्जुन को टेंशन लेना पड़ेगा, अरे भगवान को कैसा सेवा करने दूं। नहीं, यदि घोड़े जख्मी हो जाते थे तो उनकी सेवा शुश्रूषा भी भगवान ही करते थे, उनको दवा लगाना, उनको मलहम लगाना, ये सारा काम भगवान ही करते थे। तो सारा कार्य भगवान अर्जुन की सुख के लिए, अर्जुन की प्रसन्नता के लिए भगवान करते थे। उसी युद्ध की घटना है कि एक बार दुर्योधन रोते हुए भीष्म पितामह के पास आता है और कहता है कि पितामह नमक हरामी कर रहे हैं आप, तो अन्न हमारा खाते हैं और युद्ध पांडवों के लड़ रहे हैं, हमारे टीम में रहते मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं तो आपको हमारी तरफ से लड़ना चाहिए। ये आप देख रहे हैं जैसे भी पांडव सामने आ जाते हैं, अर्जुन सामने आ जाता है तो आप एकदम ऐसा लगता है बांध नहीं मार रहे, आप तो उनको हार पहना रहे हैं उनको, ये युद्ध करने का तरीका है क्या? ऐसा युद्ध करते रहा तो हम तो हार जाएंगे। तो भीष्म पितामह का जब नमक हरामी की बात सुनी तो भीष्म पितामह क्रोध में आए और कहे कि दुर्योधन मेरी तीन प्रतिज्ञाएं सुन लो, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा, आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि अर्जुन की रक्षा के लिए साक्षात श्रीहरि को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी और उन्हें अस्त्र उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा करने के लिए मैंने श्री कृष्ण को बाध्य नहीं कर दिया तो मैं माता गंगा और महाराज शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। फिर भीष्म पितामह कहते हैं यदि श्री कृष्ण ने आज अस्त्र नहीं उठाया तब क्या होगा? यदि कृष्ण ने आज अस्त्र नहीं उठाया तब आज अर्जुन को रथ से हीन कर दूंगा, उसका महाधनु गांडी तोड़ दूंगा और ऊपर जो हनुमान बैठा है ना उसको वहां से उतार दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भीष्म पितामह और कहने लगे यदि मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि पांडवों का दल भयभीत होकर भागेगा और खून की नदियां बहेगी। तो इस तरह से जो भीष्म पितामह की बात सुन ली तब दुर्योधन को आनंद आ गया, तब दुर्योधन कहा कि अब आएगा मजा। और वास्तव में उस दिन जो भीष्म पितामह ने युद्ध किया था वो अपने ओरिजिनल स्टाइल में युद्ध किया था, सारे पांडव सेना पर एकमात्र भीष्म पितामह भारी पड़ गए थे। अर्जुन को किसी भी दिन पसीना नहीं आया था लेकिन आज अर्जुन को पसीना छूट रहा था। कब बाण भीष्म पितामह उठा रहे थे, कब मार रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज भीष्म पितामह अतिरथी थे और अपने पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन को पसीना छूट रहा था और बाण उठाने का टाइम नहीं था, तब भगवान को क्रोध आ गया और भगवान रथ से कूद पड़े। तो जब भगवान रथ से कूद पड़े तो भगवान भी क्रोध में थे, वहां पर भीष्म पितामह क्रोध में और यहां पर भगवान क्रोध में थे। जैसे ही भगवान रथ से कूदे तो पृथ्वी कांपने लगी, भूकंप आ गया और भगवान ने विचार किया कि आज भीष्म पितामह को नहीं छोड़ूंगा। और जब जैसे भगवान क्रोध के मारे वो जा रहे थे उन्होंने उनको कुछ अस्त्र चाहिए था तो उन्होंने वहां पर एक रथ का पहिया पड़ा था उसको उठा लिया और भीष्म पितामह की तरफ दौड़ पड़े। और भीष्म पितामह अभी भगवान पर बाणों की वर्षा कर रहे थे और ऐसी वर्षा कर रहे थे कि भगवान को जो कवच था वो टूट पड़ा और भगवान के शरीर में से खून छूने लगा, खून निकल रहा था। लेकिन भगवान अपनी भक्त अर्जुन की रक्षा करने हेतु, क्योंकि वो समझ गए थे कि आज भीष्म पितामह निश्चित अर्जुन का वध कर देंगे तो मुझे आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा और अर्जुन की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने तो भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, कहा प्रभु आपकी नाक कट जाएगी, तो कहा मेरी नाक कटने दे, तू पहले जिंदा तो रहे। तो भगवान ने भीष्म पितामह की तरफ जब दौड़ रहे थे तो कुछ समय तक तो पितामह भीष्म बाणों की वर्षा कर रहे थे लेकिन जब भगवान नजदीक आ गए तो भीष्म पितामह ने अपना धनुष नीचे रख दिया और भगवान के चरण कमल में हाथ जोड़े, कहे आइए प्रभु, इसी दिन का तो इंतजार था कि आपके हाथों मेरी मृत्यु होगी, 400 साल से इसी का तो इंतजार कर रहा था कि आपके हाथों मृत्यु हो जाए। तो इस तरह से तो वास्तव में भीष्म पितामह सब लोगों को, समाज को, संसार को भगवान के भक्तवत्सलता को प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन का वध कर दूंगा और वास्तव में आज वो साबित हो गया किस तरह से भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपनी विश्वविख्यात प्रतिज्ञा को तिलांजलि दे दी। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम करते हैं। यदि हम उनकी भक्ति करेंगे तो वे हमारे भी वैसे ही रक्षा करेंगे। इस तरह से कई सारी घटनाएं श्रीमद् भागवत में हम लोगों को श्रवण करने मिलती है। भगवान के गुण, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, उनका ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य आदि को हम लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवत में। यदि हम ध्यान से देखें, अगर भागवत के चरित्रों को ध्यान से देखें, तो श्रीमद् भागवत सुनने से ही, कृष्ण कथा सुनने से ही बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। और सबसे मुख्य है महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित को शाप मिला था कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वो शाप मिलने के पश्चात महाराज परीक्षित वन की तरफ चले गए साधु संग करने के लिए। और वहां पर एक ऋषियों का बहुत बड़ा समाज वहां पर उपस्थित हो गया, और महाराज परीक्षित ने उन्हें 2 प्रश्न पूछे। कहे कि हर समय करने वाला कार्य कौन सा है, और जिसकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसको विशेषकर क्या करना चाहिए। तो जब ये प्रश्न पूछा तो ये साधुओं का समाज बैठा था, उन लोगों में इष्टागोष्ठी चालू हो गई। और उसी समय वहां पर व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए, और तुरंत उन साधु ने कहा, परीक्षित वो रहा तुम्हारा उत्तर, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा उत्तर भेज दिया, जाओ और सुखदेव गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करो। तो सुखदेव गोस्वामी से भी उन्होंने वही प्रश्न किया, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज परीक्षित, श्रीमद् भागवत सुनने से उद्धार हो जाएगा, श्रीमद् भागवत सुनने से। तो महाराज परीक्षित ने 7 दिन और 7 रात तक सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुना, और एक प्रार्थना करते हैं, जो सारा भागवत सुन लिया उसके बाद ये प्रार्थना करते हैं, अनुजाने ही माम ब्रह्मन वाचम यश्यामि अधोक्षजे मुक्त कामाशयम चेता प्रवेश विसृजामि असुन, कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरु महाराज, मैंने आपके मुख से श्रीमद् भागवत सुन लिया 7 दिन और 7 रात तक, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए समाधि में मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी कहे, ठीक है, तथास्तु। इनकी मृत्यु तक्षक नाम के सांप से डसने से होने वाली थी, लेकिन ये महाराज परीक्षित भागवत की कृपा से उनका चित्त पूरी तरह से श्री कृष्ण में लग गया था, और अब यहां पर समाधि की दशा में वे अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। तक्षक ने केवल एक मृत शरीर को अग्नि देने का जो कार्य है वो तक्षक ने किया, शाप का महाराज परीक्षित पर कोई असर नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा उदाहरण है भागवत में, किस तरह से भागवत का आश्रय ग्रहण करने से, भगवान के गुण रूप लीला आदि का श्रवण करने से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भागवत में ऐसे कई उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। आप इनको देख लीजिए, रहुगण को देख लीजिए। रहुगण ने जब जड़ भरत जी का संग किया, जड़ भरत एक परम हंस वैष्णव थे, तो उनकी संगति से राजा रहुगण भी एक परमहंस वैष्णव बन गए। ऐसे कई सारे उदाहरण भागवत में मिलते हैं। तो हम सबको भागवत का आश्रय नित्य ग्रहण करना चाहिए। रुक्मिणी जी के जीवन में आप देख सकते हैं कि रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था। रुक्मिणी जी के पिता के घर में बारंबार साधु लोग आया करते थे, और क्या करते थे, भगवान के गुणों को गाया करते थे कि आज श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया, आज कालिया का एक दमन कर दिया, आज इस असुर को मारा, आज उस असुर को मारा। इस तरह से साधु लोग प्राय आकर रुक्मिणी जी के जो पिता के घर पे सुनाया, भगवान की कथा को सुनाया करते थे, उसे सुनकर रुक्मिणी जी ने निर्णय किया कि अगर मेरा कोई पति होगा तो स्वयं श्री कृष्ण ही होंगे, अन्य कोई मेरा पति नहीं होगा। तो रुक्मिणी जी ने भगवान के गुणों को सुनकर निर्णय किया कि मुझे श्री कृष्ण ही अपने पति के रूप में चाहिए। तो हम साधकों के लिए भी श्रीमद् भागवत ही आधार है। भगवान के गुण रूप लीला आदि, ये जो भगवान की कथाएं जो भागवत में रखी गई हैं, यही हम लोगों के लिए आधार है। इसका हमें नित्य श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और इसका कीर्तन करना चाहिए। यही करने से निश्चित रूप से हमारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाएगा और संसार से हमारी जो आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है।
हरे कृष्णा। अभी प्रेजेंट टाइम में दो डिवोटी के बीच में टसल हो गया, झगड़ा हो गया, तो भगवान किसको प्रोटेक्शन देंगे? समझो असीम कृष्ण प्रभु से और मेरा कुछ टसल हो गया, तो भगवान कैसे किसको कितना प्रोटेक्शन देंगे? फॉर एग्जाम्पल,
पहली बात तो आपको असीम कृष्ण प्रभु झगड़ा करना नहीं चाहिए, क्योंकि असीम कृष्ण प्रभु श्रेष्ठ वैष्णव अभी संन्यास लेने वाले हैं।
ऐसी सिचुएशन हो गई कि हो गया तो क्या करेंगे, भगवान किसको प्रोटेक्शन देंगे?
तो जब विश्व पितामह और परशुराम जी के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो दोनों एकदम बराबर वाले थे, कोई हार नहीं मान रहा था, किसी की हार हो भी नहीं रही थी और कोई हार सकता भी नहीं था। उस समय नारद जी पीछे पड़ गए और कहे कि विश्व पितामह के पास गए और कहे कि मूर्ख हो, कितने बड़े मूर्ख हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, धर्म के ज्ञाता हो और अपने गुरु से लड़ रहे हो। तो जो अगर दो वैष्णव में झगड़ा हो रहा है, अगर उसमें से एक तो छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो उनको इसी एटिकेट का पालन करना है, जो छोटा है उसको अपने आप को नम्रतापूर्वक अपनी हार मान लेनी चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा, तो नम्रतापूर्वक अपने आप को हीन मानना चाहिए। वैष्णव का अर्थ यही होता है कि सारे लोग वैष्णव है, मुझे छोड़कर अन्य सारे लोग भक्त है, तो ये वैष्णव का भाव है कि सारे लोग डिवोटीज है, एकमात्र मैं ही नहीं हूं, ये भाव है।
सवाल है कि भगवान किसकी रक्षा करेंगे ज्यादा?
हाँ,
वो छोटे बड़े को नहीं देखेंगे?
नहीं, मैं समझ रहा हूँ,
वो सच्चाई को देखेंगे।
मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि भगवान कहीं उपदेश दे रहा हूँ कि जो नारद जी ने जो समझाया विश्व पितामह को, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान का उपदेश को समझना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान को संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? भगवान के जो भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति कीजिए ना।
वो वक्त के साथ मालूम पड़ जाएगा वो किसके साथ है।
हाँ,
वक्त के बाद, कुछ वक्त के बाद मालूम हो जाएगा वो किसके साथ है। ईश्वर।
हरे कृष्ण। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, उस समय दुर्योधन ने पितामह भीष्म से प्रधान सेनापति बनने के लिए पूछा, तो पितामह भीष्म ने ये बोले, ये कंडीशन पे मैं सेनापति बनूंगा कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, कि जैसे मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है ऐसा उनके प्रति प्रेम है, मैं आपका पितामह हूं इसलिए मैं किसी का वध नहीं, पांडव छोड़ के बाकी सबका मैं वध करूंगा, ऐसे उन्होंने कंडीशन किया, नहीं तो भाई नहीं चाहिए पोजीशन। तो उन्होंने फिर पितामह को बना दिया प्रधान सेनापति। उसके बाद एक समय दुर्योधन ने आलोचना की कि आप मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप खाली दिखावा कर रहे हैं, आप होते हुए भी कितना हमारी सेना मारी जा रही है, अगर आप सही ढंग से युद्ध करोगे तो इतना सेना मरेगी नहीं। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों का वध करूंगा कल, जब ऐसी प्रतिज्ञा की तब द्रौपदी को चिंता हुई कि भीष्मा प्रतिज्ञा महान है, वो अटूट है, कोई रोक नहीं सकता है। तब कृष्ण से उन्होंने चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि प्रभु रक्षा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण उनको शिविर में लेके गए पितामह के पास, और उस समय वो भगवान चिंतन में डूबे हुए थे। उस समय वो दुर्योधन की पत्नी उनके पास जाके आशीर्वाद लेती थी, तो उसके पहले पहुंच गए और उनको आशीर्वाद उन्होंने दे दिया
जी।
तो उन्होंने उनको चरण स्पर्श किया, बोले पितामह आपका आशीर्वाद वापिस लौटाओ। बोला क्यों? तो आप तो पतियों का वध करने का बोला है पांडवों का, तो वापस लो। तो बोले जो दिया है मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, अब दिया है तो दिया है। लेकिन कृष्ण को बोले देखो आप मेरे प्रतिज्ञा झूठा कर दिया है, मैं भी आपका प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। प्रतिज्ञा तोड़ूंगा नहीं तो अर्जुन मर जाएगा, दोनों में से एक। तो भक्त जो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, भक्तों से भी सखाते थे मृत्यु मृत्युतम। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन और भीष्म का युद्ध हो रहा था, तब पूरे कोशिश किया अर्जुन ने, फिर भी वो क्या हुआ, वो अपने सुध-बुध खो गया युद्ध में और उनका धनुष हाथ से गिर गया और मूर्छित अवस्था में रह गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे कूदे, उन्होंने रथ का पहिया हाथ में लिया और पहिया लेके दौड़े भीष्म के पास उनको मारने के लिए। तब भीष्म ने हाथ ऊपर कर दिया, बोले प्रभु मेरी यही इच्छा है कि मैं आपके हाथ से मरूं और मेरा भी सब काम खत्म हो गया, मैं खाली आपका प्रतिज्ञा ही तोड़ना चाहता था, मेरा इच्छा पूरी हो गई, आप मुझे मरने से कोई तकलीफ नहीं है, जैसा आपकी इच्छा, चाहे रक्षा करिए चाहे मारिए, मैं आपका समर्पित हूं। तो उस समय जल्दी से अर्जुन सावध हुआ, उन्होंने भीष्म भगवान के जांघों में हाथ डाल के उनको रोका, बोला अब मैं अच्छा से युद्ध करूंगा, प्रभु आपको शस्त्र उठाना नहीं पड़ेगा। हरे कृष्ण।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, सुंदर क्लास दिए। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि निसंदेह भगवान श्री कृष्ण जो है, जैसे हम भागवत की शुरुआत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः, जो स्तुति करते हैं, तो भगवान के जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। और यहां पर विश्व पितामह के प्रसंग में आता है कि विश्व पितामह जब तीर छोड़े तो भगवान के शरीर से स्वरूप से खून चुने लगा, तो कैसे इसको समझे, थोड़ा खुलासा।
वास्तव में भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान युद्ध कर रहे थे तो भगवान को युद्ध में रस चाहिए, युद्ध हो रहा है लेकिन उसमें भगवान वीर रस का आस्वादन करने के लिए युद्ध कर रहे थे, तो भगवान को उसका पूरा आस्वादन कराने के लिए योग माया द्वारा व्यवस्था होती थी कि भगवान का जो शरीर जो कि सच्चिदानंदमय है लेकिन फिर भी उसमें से खून छूता था, ताकि भगवान को एक जख्मी योद्धा को किस तरह से उसको पीड़ा होती है, या फिर उसको क्योंकि एक क्षत्रियो को अगर बाण लगता है तो उसके लिए दुख का कारण नहीं होता है, उससे उसका उत्साह बढ़ता है। अगर एक क्षत्रियो को बाण लगता है युद्ध में, घायल होता है, तो वो और खूंखार हो जाता है और अपने जो विरुद्ध में जो लड़ रहे हैं उनकी तरफ और आक्रोश के साथ युद्ध करता है। तो यहां पर भगवान का भीष्म पितामह के बाणों से जब भगवान घायल हुए, तो पहली बात तो ये सिद्धांत समझना चाहिए कि भीष्म पितामह खुद कहते हैं कि ये जो बाण जो लग रहे हैं कृष्ण को, वास्तव में ये एक गार्लैंड के जैसे, एक फूल माला के जैसे उनको मिल रहा है, भगवान को कोई चोट नहीं लग रही है, लेकिन अभी ड्रामा कर ही रहे हैं युद्ध करने का और भगवान को पूरी तरह से रस का आस्वादन मिलना चाहिए, वीर रस का, इसलिए योग माया व्यवस्था करती है कि भगवान के शरीर से खून निकले ताकि भगवान को रस का पूरा पूरा आस्वादन मिल सके। ठीक है।
इसका अर्थ है जैसे कोई ड्रामा होती है उसमें जो नायिका होते हैं नायक होते हैं तो उसमें जो खून खराब होती है वो सब झूठा रहता है और वो आर्टिफिशियल कलर जैसे लगा।
नहीं, आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते, लेकिन रस का आस्वादन कराने हेतु योग माया की व्यवस्था होती है कि भगवान के इसमें से खून निकले ताकि उनको उससे सुख मिले। अभी भगवान का हरेक कार्य लीला है, उनका कोई भी कार्य जो है ये जन्म कर्म समय दिव्यम दिव्य है, अप्राकृत नहीं है, सॉरी अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है, अलौकिक है। तो ये कार्य युद्ध कर रहे हैं तो इस युद्ध में भी उनको उस वीर रस का आस्वादन करने के लिए उन भगवान योग माया चाहती कि भगवान को इससे सुख मिले। इसकी भगवान की जो सारी शक्तियां होती है वो इसी कार्य में रहती है कि भगवान को किस तरह सुख मिले हर एक कार्य में। जैसे भगवान छोटे होते हैं, जैसे दामोदर लीला में आप देख सकते हैं कि माँ यशोदा उनको डांटती है, भगवान माखन चोरी करते हैं, तो उस समय अगर भगवान श्री कृष्ण को ये भाव रहेगा कि ये मैं तो सारे सृष्टि का स्वामी हूं, एकमात्र जगदीश्वर हूं, तब तो हो गया, तब तो लीला का आस्वादन हो गया। फिर तब तो माँ की डांट कैसे मिलेगी। यदि भगवान ब्रज में भी इसी भाव में रहेंगे कि मैं तो श्री कृष्ण हूं, मैं सारे आई एम द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड एंड ब्रह्मा शिव आदि मेरे किंकर है, दास है, तो रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। जब भगवान और उनके सखा लोग खेलते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि भगवान कहते थे कि मैं घोड़ा नहीं बनने वाला हूं, मैं नंद महाराज का पुत्र हूं, राजा का पुत्र होकर मैं घोड़ा बनूंगा। तो सारे लोग बोलते थे चल इसको निकालो खेल, जब घोड़ा नहीं बनेगा तो हम लोग के साथ खेल क्यों रहा है, खेल में राजा बीजा कोई नहीं होता, जा निकल यहां से। तो वे लोग भगवान जाकर रोते थे पेड़ के पास कि अरे आई एम सॉरी, मैंने गलती हो गई मेरे से, मुझे ले लो वापिस, मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूंगा, मुझे वापिस ले लो। तो फिर उनको बुलाया जाता था, बोले ये सब ड्रामा दोबारा नहीं करोगे ना कि मैं राजा का पुत्र हूं, ये पुत्र हूं, तो ये दो ये देखो। तो भगवान ब्रज में भगवान की भगवत्ता की कोई कीमत नहीं है, ब्रज में भगवान एक साधारण बालक की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि है वो भगवान किसी भी स्थिति में, उस खेल में उन्होंने इंद्र को दंड दे दिया, ब्रह्मा की मट्टी ठिकाने में लगा दी, तो उसी तरह से यहां पर भी भगवान एक क्षत्रिय का यदि भगवान है लेकिन यहां पर एक सारथी है, श्री कृष्ण एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध कर रहे हैं। तो जिस तरह से बाल लीला का आस्वादन भगवान तभी कर पाए जब उनका जो भगवत्ता का भाव था वो भुला दिया योग माया ने। अगर वो भगवत्ता का भाव रहता तो माँ का जो वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कैसे कर सकते थे। अगर वैसे ही अगर यहां पर भी यदि इस युद्ध में अगर भगवान अगर अपने सच्चिदानंद स्टाइल से आते, कोई कितना भी बाण मारता, एक खून का एक कुछ निकल बूंद भी नहीं निकलता, तो भगवान उस वीर रस का आस्वादन नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान की शक्तियों की व्यवस्था है कि यद्यपि श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है फिर भी लीला के लिए, लीला का प्रदर्शन करने के लिए और श्री कृष्ण का सुख प्रदान करने के लिए उनके शरीर से ये खून निकलता है। तो ये खून भी साधारण खून नहीं है, जब उनका शरीर ही दिव्य है तो खून कहां से प्राकृत हो जाएगा, तो ये खून भी दिव्य ही है। जब भगवान पिशाब कर देते थे किसी के घर पे जाकर, जब माखन नहीं मिलता था तो भगवान उनके जब खाना बनाया होता तो उसमें जाकर पिशाब कर देते थे, तो भगवान के शरीर में काहे से पिशाब आ गई। लेकिन भागवत में आचरण का टीका में तो वर्णन है, लेकिन ये भगवान की पिशाब यदि करते थे तो ये भी साधारण साधन नहीं, वो तो अमृत है वो। तो इस तरह से इस प्रश्न को समझा जा सकता है। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की।